आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने जो लब्धि सार ग्रंथ लिखा है, उस लब्धि सार ग्रंथ के आधार से प्रथमोक्षम समय से पूर्व होने वाली जो पांच लब्धि है, उसकी यहाँ हम चर्चा आरंभ कर रहे हैं। पांच लब्धियों के नाम हमने देखे हैं, शोपक्षम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायों की लब्धि और करण लब्धि। इसका अभी हम अर्थ देखना प्रारंभ कर रहे हैं। क्षोपक्षम लब्धि की परिभाषा हमने देखी है, पृष्ठ संख्या है गुजराती में 65 है ना, क्योंकि हिंदी में 68 नंबर है। देखो क्या हमने लोग करके इसको देखा नहीं था, इसको देख करके आगे बढ़ते हम। ज्ञाना वर्णादि समस्त, ज्ञाना वर्णादि में जब हम कहते ना, हम जब कहते वृषभादि सभी 24 तीर्थंकर, उसका अर्थ क्या है, वृषभ से लेकर महावीर तक सभी तीर्थंकर, आदि का एक नाम लिया और आगे आदि लगा दिया, ऐसे ज्ञाना वर्णादि कह दिया, उसका अर्थ क्या है, सभी। सभी में किसको लेना, अप्रशस्त कर्मों को। तो ज्ञानावरणादि समस्त अप्रशस्त कर्म प्रकृतियों की शक्ति, कर्मों की शक्ति यानी क्या, अनुभाग, जिस काल में समय समय प्रति, समय समय प्रति का अर्थ होता है एवरी समय, प्रति समय अनंत गुणा घटता, अनंत गुणा घटता का अर्थ जितना है उसका अनंत वा भाग रह जाना, फिर जितना है उसका अनंत वा भाग रह जाना, तो अनुभाग अत्यंत हीन 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 होते चला जाता है और हीन हीन होकर उदय में आने लगता है। किसकी बात चल रही है, अप्रशस्त कर्मों की, पुण्य कर्म अप्रशस्त यानी पाप कर्म, ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहनी और अंतराय, इनके जो 47 उत्तर प्रकृतियां है याद है ना, पांच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मोहनी की 28 और अंतराय की 5, इनमें पुण्य प्रकृतियां कितनी है डॉक्टर साहब,
देखनी पड़ेगी
एक भी नहीं है।
सभी पाप रूपी है, तो पुण्य कहाँ, हमारा सारा इतना हमने किया तो कहाँ गया, सारा सारा अघाती कर्मों में गया है ना, उसमें पुण्य पाप के दो भेद होते भाई। जब हम स्वाध्याय कर रहे हैं होंगे ना, हमने पुण्य बांधा, शुभ भाव किया, कहाँ किया, शुभ भाव करो या अशुभ भाव करो, आयु कभी कभी बनती है, सात कर्म तो निरंतर बनते हैं, तो ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहन और अंतराय तो हर समय बंद रहे ही है। आप शुभ कर्म करो या अशुभ कर्म करो, पुण्य करो या पाप करो, शुभ भाव या अशुभ भाव करो, चार घाती कर्म तो निरंतर बंधेंगे ही बंधेंगे। और उसमें कितने पुण्य है, बिल्कुल नहीं है, वो पाप ही है, यानी पुण्य करने से भी पाप तो बनता ही है। तो हमारा सारा बेकार गया, नहीं बेकार नहीं गया, किसमें हो कुछ फर्क होगा, अघाती में। अघाती में क्या है, साता वेदनी बंधेगा, शुभ आयु बंधेगी, नाम कर्म शुभ बंधेगा, उच्च वत्र बंधेगा, उसका फल कौन भोगेगा, अरे सारा संयोगों में और शरीर में मिलना है, वो आपके हाथ में कुछ नहीं लगना है क्या है? और वो तो बंदा ही है ही है, अभी उसकी चर्चा हो चुकी, अभी यहाँ हम विषय अलग चल रहा है। अब ये जो उसका अप्रशस्त कर्मों का अनुभाग प्रति समय अनंत गुना घटता उदय में आ रहा है, इसकी कौन से कर्म की बात चल रही है, जो ऑलरेडी पूर्व में बांधे थे और सत्ता में पड़े थे। सत्ता में पड़े हुए कर्म जब उनका कॉन्ट्रैक्ट पूरा होता है, कौन सा, कि मैं इतने काल तक आपके साथ रहूंगा, वो कॉन्ट्रैक्ट करके आते हैं, वो पुद्गल परमाणु है, वो जीव का कुछ लेना देना नहीं उनसे, तो वो तो अपनी स्थिति पूरी होते ही चले जाएंगे बाय बाय करके, ऐसा ही नहीं जाएंगे, कुछ फल लेके जाएंगे। तो उनका फल कब मिलता है, जब उदय में आते हैं तब। जितना उनका अनुभाग ज्यादा उतना फल ज्यादा, तो पाप कर्मों का अनुभाग ज्यादा यानी तीव्र प्रतिकूलता जो कुछ, ज्ञानावरण का अनुभाग ज्यादा यानी ज्ञान की हीनता। अब ज्ञानावरण का अनुभाग कम हुआ उसका अर्थ क्या हुआ, अरे ज्ञान का उभर बढ़ रहा है, कब हुआ, कब होगा इतना बढ़ना, प्रति समय बढ़ता चला जाएगा। तो ये सभी अप्रशस्त कर्मों का अनुभाग प्रति समय अनंत गुणा घटता 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 उदय में आएगा, तब उस काल को क्या कहेंगे, क्षोभशम लब्धि। ये बात हमने देखी थी, अब क्षोभशम और क्षोभशम लब्धि में क्या अंतर है उसको हम देखेंगे। देखो हमने देखा है कि क्षोभशम यानी ज्ञान के उघाड़ को क्षोभशम कहते हैं, अपनी भाषा में दोपहर में जो विषय है मति ज्ञान, ये क्षोभशम ज्ञान है, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपरे ज्ञान, ये कैसे ज्ञान है, क्षोभशम ज्ञान है। अब हम अवधि मनपरे की बात छोड़ देते, हम आपको मति श्रुत ज्ञान है वो कैसा ज्ञान है, क्षोभशम ज्ञान है। निगोद वाले जीवों को क्षोभशम ज्ञान है, यानी जीव निगोद में हो यानी एकेंद्रिय में हो या द्विन्द्रिय में या पंचेन्द्रिय में, क्षोभशम तो सब जगह है ही है, तो ज्ञान का क्षोभशम तो हर समय चलता है। कब चलता है, नींद में चलता है कि नहीं चलता, तो क्या कहते हैं, अनादि से लेकर और बारहवें गुणस्थान तक चलेगा ज्ञान का क्षोभशम। तो ज्ञान का क्षोभशम होना ये क्षोभशम लब्धि नहीं है, तो वो नींद में भी होता है, कोमा में भी होता है, एक भव छोड़ के दूसरे भव में जाता है, तो विग्रह गति में भी क्षोभशम कुछ ना कुछ तो चलता है ना। अभी संगी पंचेंद्रिय जीव है तो उसका क्षोभशम कब नहीं है, हर समय चल रहा है, एक इंद्रिय में गया उसके योग्य क्षोभशम चल रहा है। तो अकेले संगी पंचेंद्रियपना प्राप्त होना ये क्षोभशम लब्धि नहीं है, कहीं कहीं ऐसा लिखने में आता है, क्यों, क्योंकि वो बहुत स्थूल कथन होता है, शास्त्रों में भी कहीं लिखा है संगी पंचेंद्रिय प्राप्त पना प्राप्त होना ये क्षोभशम लब्धि, तो हम कहते चलो हमें एक लब्धि तो मिल गई, ऐसा नहीं है। क्या लिखा है, जिस काल में सभी अप्रशस्त कर्मों का ये हीन हीन होकर उदय में आने लगता है, तो वो और काल हमने क्या देखा, एक कंडीशन प्रत्येक लब्धि का काल कितना, एक अंतर्मुख, और संगी पंचेंद्रिय पना कितने काल तक चलेगा, अरे जन्म से लेकर मरण तक, जन्म यानी कौन सा, वो गर्भ में आने का समय से लेकर, संगी पंचेंद्रियपना उतने काल तक रहेगा कि नहीं रहेगा, पर क्षोभशम लब्धि कितने काल तक रहेगी, एक अंतर्मुख, किस काल में, वो तत्व विचार के काल में चलेगी उसकी। ये एक पॉइंट हुआ। अब हम यहाँ पढ़ते हैं, यहाँ देखो 67 पेज पर। जब शोभशम कहते हैं हम, शोभशम में हमने क्या देखा था, देशघाती कर्मों का उदय चलता है और सर्वघाती पड़े रहते हैं, है ना। तो देशघाती में भी बहुत सारे देशघाती कर्म जो है ना, उसका नाम क्या है, ज्ञानावरण की बात करते हैं। देशघाती स्पर्धकों का नाम क्या है, लता भाग वाले, और दारू का थोड़ा भाग। अब जो लता भाग वाले में भी अनंत स्पर्धक है, हमने तो ये नीचे वाले अत्यंत हीन वाले, फिर और अनुभाग, और लता भाग वाले सभी देशघाती है। देशघाती में भी तीव्र अनुभाग का उदय हो जाएगा तो क्या होगा, ज्ञान बहुत हीन रहेगा, नहीं समझेगा। आवरण बहुत है तो ज्ञान कैसा होगा, कम ज्ञान। अभी संगी पंचेन्द्रिय जीव है, हम देखते हैं हमारे आजू बाजू में किसी के और कोई मति मंद है, बेन आपने तो बहुत सारे देखे ना केसेस, मति मंद, सब नॉर्मल, मेंटली सब नॉर्मल जिसको हम कहेंगे, तो उनकी मति यानी बुद्धि कम होती है, हम देखते हैं वो है तो मनुष्य, फिर भी आम अन्य नॉर्मल बच्चों की अपेक्षा उनकी बुद्धि अत्यंत ही नहीं, एकदम इंटेलिजेंस कम है। क्यों, मति शुद्ध ज्ञान उनको भी है फिर भी इंटेलिजेंस कम है, क्यों, आवरण ज्यादा है। ये तो हम निमित्त की भाषा में देख रहे हो भाई, वो आवरण कुछ नहीं करता है, जीव की ऐसी योग्यता है कि उसको ज्ञान का कम उघाड़ है। अभी हमारी सारी बात कथन निमित्त की भाषा में चलेगा, कथन करने में कोई दोष नहीं है, वैसा ही हम मान लेंगे तो दोष है। आओ देखो, अभी हम देखते हैं यहाँ 67 पृष्ठ पर हम पढ़ेंगे कि देश, जब हम क्षोभशम की बात करते हैं तो क्षोभशम में कितना है, जितना अनुभाग है उतना हर समय उदय चलेगा, थोड़ा ही ना दिखोगा, परंतु हमारी जो इंटेलेक्चुअल लेवल है, आईक्यू हम कहेंगे ना, इंटेलिजेंट क्वेश्चन, तो वो साधारण उसकी लेवल हमेशा बनी रहेगी। और क्षोभशम लब्धि में क्या हो रहा है, प्रति समय ज्ञान बढ़ता चला जाएगा, ये क्षोभशम लब्धि कहलाती है। क्षोभशम तो हर समय चलेगा, ज्ञान का उघाड़ है, नींद में भी वो संगी पंचेन्द्रिय ही कहलाएगा, कोमा में भी वो संगी पंचेन्द्रियपना चला तो नहीं जाएगा, तो वो तो क्षोभशम तो बना रहता है, परंतु क्षोभशम लब्धि अंतर्मूर्त तक होती है, ये दूसरा पॉइंट हुआ। अब क्षोभशम कहां कहां पाया जाता है, हमने देखा था मिथ्या दृष्टि है जी, अभी सम्यक तो प्राप्त नहीं हुआ है, तो कौन कौन से कर्मों में क्षोभशम चल रहा है, तो ज्ञानावरण का क्षोभशम चल रहा है, क्योंकि मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान ये क्षोभशम ज्ञान है, अनादि से है। दर्शनावरण में भी चल रहा है, अचक्षु दर्शन चल रहा है, और संगी पंचेन्द्रिय तो चक्षु दर्शन भी चल रहा है, अवधि दर्शन के वगैरह हम बात नहीं करेंगे, और जो दान लाभ भोग उपभोग वीर्य वाले हो उसमें भी क्षोभशम चल रहा है, यानी वीर्यांतराय का भी क्षोभशम चल रहा है, तो अनादि से ही ये मिथ्या दृष्टि होकर भी क्षोभशम चल रहा है। क्षोभशम लब्धि के काल में क्या होता है, देखो ये क्षोभशम लब्धि जो है जीव की ऐसी अवस्था है कि जिसको सम्यक दर्शन होने वाला है उसको जब ऐसी अंदर से रुचि होती है कि मैं अपना स्वरूप जान लू, कुछ सुन लू, ये क्या चर्चा चल रही है, ऐसे भाव होते हैं उसके, तो उस काल में क्या हो रहा है, ये बात चल रही है, तो क्या होता है उस काल में, मिथ्यात्व का भी अनुभाग हीन होने लगा है। जब हम क्षोभशम की बात की थी तो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान तो क्षोभशम वाला ज्ञान है, यहां देखो संगी पंचेन्द्रिय जीव है, इतने को ही अगर हम क्षोभशम लब्धि कहेंगे तो जो तीव्र मिथ्या दृष्टि है, 70 कोड़ा कोड़ी सागर का बंध कर रहा है, उसको तो हम क्षोभशम लब्धि नहीं कहेंगे ना उस काल में। तो यहां क्या कहना चाहते, दर्शन मोहिनी का भी अनुभाग घट रहा है, चारित्र मोहिनी यानी सारे क्रोध मान माया लोभ वाले जो सारे जो कर्म है उनका भी अनुभाग यानी फल लेने की शक्ति वो भी घट रही है, इसको कहेंगे क्षोभशम लब्धि। दोनों में डिफरेंस ख्याल में आता है भाई, थोड़ा नया विषय है ना, पहली बार सुनते हैं, हाँ सुनना, वो जरूर अंदर काम करता है। हम जो नया मटका लाते हैं घड़ा बाजार से, हाँ कुमार के पास से हम घड़ा लेके आए भाई, नया एकदम, और उसमें पानी डाला,
बूंद डाला,
कितने बूंद डाले,
अरे 200 तक बूंद डाले, क्या हुआ? सूखा का सूखा ही दिख रहा है, कुछ काम नहीं किया उन्होंने, किया क्या नहीं किया, हो रहा है कि नहीं अंदर का? तो फिर हमने 201 नंबर का बूंद डाला तो गीला दिख दिया। तो भाई साहब ने कह दिया कि अरे वो पहले 201 नंबर का ही पहले डालना था ना, तो हम उसको पहला कहते। तो पहले बूंदों ने काम किया है वहां अंदर, हमें वो व्यक्त नहीं हो रहा है, फिर भी जब हम पहली बार दूसरी बार भी सुनते हैं ना, तो ऐसा लगता है हमें कुछ नहीं जानते क्या बात हो रही है, परंतु वो जरूर अंदर कुछ ना कुछ काम करती है। हमारे घर में बच्चा पैदा होता है, अभी आपके किसी के पोते हो गए ना, नाती होगी, तो उनके साथ हम बातें करते कि नहीं करते? अरे बहुत सारी करते, क्या उनके बारात तक ले आते हैं। तो बच्चों के साथ हम बोलते हैं तो 6 महीने में बच्चा बोलना शुरू कर देते, माँ बा जो कुछ है। 8-10 महीने में तो अच्छे, और फिर साल भर में तो आपको भी चुप बिठाएगा, इतनी बातें करता है। तो सुन सुन कर करते ना, कहाँ पेड़ से वो सुनकर आया था, वहां तो उसको क्या मराठी आती है कि हिंदी आती है कि संस्कृत, कौन सी भाषा सीखता है, कौन सी सीखता है? नहीं नहीं, जो हमारा बच्चा गुजराती सीखता है कि मराठी सीखता है?
जो भाषा हम बोलते हैं,
आप बोलते हैं वो सीखता है? नहीं नहीं, देखो क्या हुआ, अभी हमारे लड़की आई है, हमने सोचा हमको बच्चा नहीं, हम गोद लेने गए,
लड़का
नहीं है इसलिए हम गोद लेने की सोची हमने, तो हम गए हमारे वहाँ एक अच्छा वो अनाथालय में गए हम कि अच्छा हम इंटेलिजेंट अच्छा बच्चा हम ले लेंगे। तो देखा एक को पसंद किया, बहुत अच्छा बच्चा एकदम प्यारा सा, पर एक मुश्किल बात थी, वो मद्रासी बच्चा था, 2 महीने का बच्चा मद्रासी बालक, वो लेना कि नहीं लेना, लेना कि नहीं लेना, तो हमने डिसाइड किया ले लेंगे। फिर हमने क्या किया, 6 महीने तक हम मल्या वो उनकी मद्रासी भाषा सीखते गए, क्यों? अरे वो मद्रासी बालक के साथ बात करनी थी ना, तो सही किया कि नहीं डॉक्टर साहब हमने? क्यों?
उसको तो कोई भाषा ऐसी हो ही
नहीं है। हम बोलेंगे वो सीखेगा ना, वो मद्रासी पेरेंट से जन्मा है इसलिए थोड़े वो मद्रासी भाषा सीख कर आया, हम जिस भाषा में बोलेंगे वो सीख जाएगा, ये कथा है। ओ
पूना वाली बात बता दी,
पूना में हमने शिविर किए थे ऐसे, वहाँ तो जैसे आप लोग बुलाते हैं वैसे हर 2-3 महीने में वहाँ बुलाते थे, तो काफी 400-500 लोग आते थे शिविर में। तो एक एजुकेटेड महिला बम्बई से वो सुनने को आई, तो ये हमने ऐसे प्रस्तुत किए, क्यों? क्योंकि हम जो स्वाध्याय करते हैं, जो हम बच्चों को सिखाते हैं, जो हम स्वयं सीखते हैं, वो तो बाय दबाए हम फिर बोलना भी सीख जाते हैं, उसका अर्थ भी समझते हैं। तो बाद में आए तो मुझे बोलते डॉक्टर साहब आपके वो बच्चे का क्या हुआ?
आपको कोई आगे कहानी घटनी चाहिए।
तो बहुत सी कहानी है वो तो वहां पूर्ति होती है, खास फॉर्मूले बनाए हुए। देखते देखो, तो ये शब्द नए है इसलिए बिल्कुल घबराना मत, क्योंकि हम अपनी बात करते, जब हम ये बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ते थे तो हमें सिखाने वाला कोई नहीं था, बार बार माथा मारा तभी उसके कुछ अर्थ ख्याल में आए, जब तक ये पुस्तक लिखी तब तक स्पर्धक का अर्थ नहीं ख्याल में आता था क्या है, अभी जितना खोलकर बता सकते हैं ना, तो उसमें कुछ बात ऐसी नहीं है, क्योंकि ये हमारे लिए सारे नए शब्द है, तो जब उसमें बार बार पढ़ते तो देखो ज्ञान की पर्याय अपने से ही होने वाली है, कोई समझाता है पुस्तक में लिखा है इसलिए नहीं होता है, कोई पुस्तक हम दूसरी बार पढ़ते हैं तीसरी बार पढ़ते हैं, अरे इसमें से ये अर्थ अभी मुझे समझ में आ रहे, हम अंडरलाइन करते ना फिर दोबारा करते तो और कुछ अंडरलाइन करते, होता है कि नहीं होता? हमारे पास मोक्ष मार्ग प्रकाशक है, एक बार हमने काले लाइन अंडरलाइन किया, फिर ग्रीन में किया, फिर लाल में किया, अभी हमारा पूरा पुस्तक भर गया, क्योंकि नया नया अर्थ हमें खुद उसमें से निकलता है। अब हम देखते हैं आगे, हमने पहले देखा था कि जो घाती कर्म होते हैं उसके जो स्पर्धक यानी अनुभाग वाले जो हमने देखे थे उसमें, तो 4 नाम देखे थे, घाती कर्मों का तीव्र अनुभाग वाले स्पर्धकों का नाम क्या है? शैल। उसके नीचे वाले अस्थि, उसके नीचे वाले दारू और लता, ये चार है। तो उसमें मिथ्यात्व की बात करेंगे। मिथ्यात्व सर्वघाती प्रकृति है, उसमें शैल, अस्थि और दारू भाग वाले स्पर्धक होते, उनका अनुभाग भी कम होता है। जैसे जो तीव्र मिथ्या दृष्टि होता, अभी उसका मिथ्यात्व भी अनुभाग घटकर उदय में आ रहा है। इतनी बात हो जाती है। देखो यहाँ क्या कहते हैं, जिसे शैल भाग रूप या अस्थि भाग रूप, ये शैल और अस्थि ये तो नाम बताए, तीव्र अनुभाग वाले मिथ्यात्व का उदय है, जिसे सत्तर कोड़ा कोड़ी या तत्सम, तत्सम यानी करीबन उतना, इतना उत्कृष्ट स्थिति वाले मिथ्यात्व का बंध होता है। ये बंध हो रहा है उसका अर्थ क्या है? वो जीव तीव्र मिथ्या दृष्टि है, उसको क्षोभसम लब्धि नहीं कहलाती। क्यों? हमने देखा क्षोभसम लब्धि के काल में उसका अनुभाग मंद होकर हृदय में आता है। उन्हें विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि की पात्रता नहीं होती। क्या कहते हैं? देशना यानी उपदेश मिलना या सुनना वो अलग बात है, देशना लब्धि किसे कहेंगे? लब्धि यानी प्राप्ति, सुनना और समझना, जीव समझेगा तो हम कहेंगे वो जीव को लाभ हुआ, वो कान पर उसके आ गया, उसको हम सुनना नहीं कहते, उसको लब्धि नहीं कहेंगे, उसको देशना कहेंगे, उसको लब्धि नहीं कहेंगे। तो ये जिसको तीव्र मिथ्यात्व है वो सुनने को भी नहीं आएगा, जिसको तीव्र मिथ्यात्व है वो सुनकर भी उसका विरोध जागृत होगा, वो बात उसको सुहाएगी नहीं अंदर से, है ना? आज क्या पकौड़े बनाए थे ना, उबाला था तेल, तो तेल उबाला तो भाई साहब ने, बच्चों भाई ने सोचा रही ये उबल रहा है थोड़ा पानी डालेंगे, क्यों रोना बहन, चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं चलेगा, क्यों? तो ये उबलते हुए तेल में वो शीतल जल क्या काम करेगा? भड़का हो जाए, आग लग जाएगी, और वो पकोड़े डालो तो अच्छे तलकर ऊपर आएगी। ऐसे तीव्र मिथ्या दृष्टि है, उसको विषय कषाय की बातें करें तो अच्छा लगता है, और जिनवानी रूपी शीतल जल उसके डाले तो एक क्रोधाग्नि होता है, उसका भड़क उठता है। आगे क्या लिखा देखो, भाव दीपिका ग्रंथ में पंडित दीपचंद जी कासरीवाल कहते हैं कि तीव्र अनुभाग वाले स्पर्धकों का जिनको उदय है, यानी अपनी भाषा में जो तीव्र मिथ्या दृष्टि है, ऐसे जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देना भी योग्य नहीं है। देखो जब हम दान देते हैं ना, तो पात्र अपात्र का विचार करते कि नहीं करते, कि पैसे निकाला और किसी भी मद्यपी को दे दिया, ऐसा थोड़ी होता है। हम दान कौन से द्रव्य का दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, तो पात्र का भी विचार करते हैं, देने वाले दातार का भी विचार होता है, सभी बातें वहां देखी जाती है। वैसे यहाँ उपदेश देना है तो जो कोई आए इधर पकड़ो और उसको डोज पिला दो, ये ऐसा नहीं चलता। अभी जो पोलियो का डोज पिला रहे ना हर बच्चे को, तो जो कोई हमारे रिलेटिव आते हैं, कोई मित्र आते हैं, उनके सामने ये सुनो ये ऐसी बात है, तो क्या करेगा वो? अरे नहीं आएगा तो अच्छा रहेगा, मगर इतना तीव्र क्रोध कर देगा कि आप में विघ्न लाएगा। आपको ये चिड़िया की बात सुनी थी ना, स्टोरी नहीं सुनाई थी? अच्छा, तो एक चिड़िया थी, वो तो आपको मालूम है, वो तो घोंसला बनाती है, भले हाथ नहीं है उसके, फिर भी चोंच से तिनका ला लाकर घोंसला बनाती है। तो उसी पेड़ पर एक बंदर भी रहता था, वो तो उछल कूद करता था, उसका कुछ घोंसला विसला कुछ नहीं था, इधर से उधर। तभी बरसात के दिन नजदीक आ गए तो चिड़िया ने बोला, अरे बंदर भाई, मैंने तो देखो मैं इतनी छोटी हूँ, मैंने घोंसला बना दिया है, हम आराम से रहेंगे, तू भी कुछ घोंसला बना ले। तो हट करके चला गया। फिर थोड़े दिन गए, फिर वो अपनी उसको सिखाने को चली, अरे बंदर भाई तू घोंसला क्यों नहीं बनाता, तू भी अपना घर बना ले, तेरे तो हाथ है, पैर है, अच्छी बुद्धि है तेरे मेरे से ज्यादा है, जा मैंने मुझे नहीं बनाना। ऐसे बार बार वो कहती गई, उसका गुस्सा बढ़ते गया, तो बहुत सियानी समझती है ये, चल करके उसने उसका घोंसला तोड़ दिया। ऐसे क्या होगा, हम जबरदस्ती किसी को सुनाने जाते तो क्या होगा, ये अपना स्वाध्याय भी छूट जाएगा। इसलिए कहते हैं तीव्र मिथ्या दृष्टि को भी ये उपदेश देना योग्य नहीं। क्यों? जो सुनना चाहता है उसको जरूर सुना, और जो सुनना नहीं चाहता है, देखो उसकी जब होनार होनी है ना, उसकी जब काल लब्धि आएगी तो उसको निमित्त भी मिलेगा, सुनाने वाला भी मिलेगा, तब उसको रुचेगा भी और सुनेगा भी और उसका सम्यक दर्शन का कार्य भी होगा। परंतु जबरदस्ती हम किसी में कुछ परिवर्तन नहीं ला सकते भाई, ये ऐसा मोक्ष, ये ऐसा ही रास्ता है, ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है। उपदेश देते समय भी पात्रता अपात्रता का विवेक रखना चाहिए, ऐसी पुस्तक में लिखी ये बात हो। देखो जो तीव्र मिथ्यात्व और तीव्र कषायी जीव है उसे धर्मोपदेश सुनने की बुद्धि नहीं होती, ये स्वाध्याय करने के उसके विचार ही नहीं आता, तो उसके तो अन्य अन्य ही सूझते रहते हैं। कोई सुनाने लगे तो उसके कषायों की वृद्धि होती है। वह उपदेशदाता का तथा जिनमें सत्य उपदेश है ऐसे सत शास्त्रों का ही द्वेष करने लगता है उसको, क्योंकि चीज है ना, तो उसे ऐसे लगता है इस जीव ये उपदेश देना चाहता है, इस शास्त्र में से उपदेश, हमको ये शास्त्र ही नहीं चाहिए, फिर कुछ न कुछ करके उसका विरोध बढ़ता जाता है, विघ्न भी डालता है। परंतु ऐसे जीवों को देखकर हमें उनका द्वेष करना योग्य नहीं, ये हमारे लिए उपदेश है। क्या ऐसे भी जीव है? देखो हर प्रकार के भाव वाले जीव होंगे, कोई तीव्र मिथ्या दृष्टि होगा, कोई क्रोधी है, कोई जिनवाने का द्वेष्टा है, तो ऐसे जीवों को देखकर हम भी द्वेष करने लगे तो हम भी उनके लाइन में चले गए ना। तो ऐसे जीवों को देखकर द्वेष करना योग्य नहीं है, उनकी सम्यत्व की काल लब्धि अभी दूर है, होनहार कुछ और ही है, कुछ और ही है, यानी हो सकता है अभी जहां जिस गति में जाना है वैसे उसके परिणाम हो रहे हैं, अभी वो भी क्या करे बेचारा, तो हमें तो उसकी करुणा आनी चाहिए। जिस वक्त उनकी सम्यक्त्व की काल लब्धि आएगी तब इन पांच लब्धि पूर्वक ही उन्हें सम्यक्त्व प्राप्त होगा, उस समय उनके मिथ्यात्व कषाय आदि मंद हो गए, जिनेन्द्र कथित सत्शास्त्रों की महिमा उन्हें भाषित होगी, उपदेशदाता भी मिलेंगे और उपदेश ग्रहण भी होगा। वे आज माने या कुछ काल पश्चात माने, परंतु सच्चे मोक्ष मार्ग का स्वरूप समझे बिना, देखो पहले में पहले सम्यक तो होने से पहले पूरे ही मोक्ष मार्ग का स्वरूप समझ में आए, आत्मा का स्वरूप समझे बिना, सच्चे देवगुरु शास्त्र का स्वरूप समझे बिना उन्हें सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होगी। यह ऐसा ही वस्तु व्यवस्था वस्तु स्वरूप है। सम्यक्त्व की प्राप्ति हुए बिना मोक्ष मार्ग का प्रारंभ नहीं होगा, मोक्ष मार्ग के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, सुख की प्राप्ति नहीं होगी और जन्म मरण के फेरों में से छुटकारा नहीं होगा। अब यही बात बताई, अभी दो चार लाइन आगे पढ़ते देखो, देखो कैसा सहज सुंदर नियम है, मिला किसी जीव ने ये सहज सुंदर नियम का अर्थ क्या है? ये जब उसके किंचित तभी तत्व जिज्ञासा जग गई उसके, उस काल में क्या हो रहा है, पूर्व में तो तीव्र मिथ्या तो किया था, बहुत पाप किए थे, अंदर सत्ता में सभी पड़े हुए हैं, उस जीव के क्या होता है कर्मों में, सभी पाप कर्मों का अनुभव घटकर उदय में आने लगता है। मिथ्यात्व का क्षोभम नहीं होता क्योंकि वो सर्वघाती प्रकृति है। सर्वघाती प्रकृति के सभी स्पर्धक कैसे हैं बोलो, सर्वघाती। तो उसका किंचित भी सूक्ष्म मिथ्यात्व भी क्यों ना हो, वो पूरा घात करती है, वो पूरा घात करती है। ज्ञानावरण दर्शनावरण और अंतराय में क्षोभम चल रहा है अनादि का, जब वो सम्यक दृष्टि होगा, उपशम सम्यक्त्व के बाद क्षोभम सम्यक्त्व होगा तब उसका क्षोभम, वो मिथ्यात्व का क्षोभम नहीं कहलाएगा, सम्यक प्रकृति। हाँ मिथ्यात्व तो सर्वघाती ही है, उसका छोटे में छोटा अंश भी सम्यक्त्व का घात करता है, ख्याल है ना। किसी जीव ने पूर्व में बहुत पाप किए हो, तीव्र मिथ्यात्व का सेवन करके तीव्र अनुभाग वाले कर्मों का बंध किया हो, तो भी जिस समय उसे अपने आत्मा का स्वरूप तथा तत्वज्ञान जानने संबंधी जिज्ञासा और तीव्र रुचि उत्पन्न होती है, अभी क्या क्या उसने उपदेश भी नहीं सुना है, उसे अंदर से रुचि जागृत हुई। देखो हम भी हमेशा ऐसा भी कहते ना, किसी पापी की घृणा मत करो, उसका द्वेष मत करो, उसको धुतकारो मत, उसके पाप का निषेध करो। अब यही पापी जीव परिणामों की ऐसी विचित्रता है कि कौन कैसा परिणाम वाला कब पलट जाए, कैसा ऐसा हो सकता है किसी भी अन्य, उसके अपने ही योग्यता से होता है और उसके वैसे निमित्त भी सहज रूप से मिल जाते हैं। हमने देखा था कितने कितने जीव ऐसे हैं कि कोई आपत्ति आती, संकट आती, उसमें से उनको ऐसे कुछ विचार हो जाते हैं कि पहले बहुत विरोध वाले जीव एकदम सुधर जाते हैं और वो इस मार्ग में लग जाते हैं। देखा है कि नहीं आपने? करो बहुत सारे, किसी की डेथ होती है या कोई भयानक संकट आ जाता है, किसी के पैरालिसिस, कुछ भी ऐसी बहुत सारी है। हमारे यहाँ एक है बहन, इतना विरोध था पहले उसको, उसका हस्बैंड कोमा में चला गया, कितनी दो चार महीने,
दो साल से
कोमा में, और तब से वो इतने स्वाध्याय में लग गई है, पूछो मत। तो उसे अपने आत्मा का स्वरूप तथा तत्वज्ञान जानने संबंधी जिज्ञासा और तीव्र रुचि उत्पन्न होती है तो उसके पूर्वबद्ध कर्मों का अनुभव मंद होने लगता है। कौन से कर्मों का? पाप कर्मों का। पुण्य कर्मों में कुछ परिवर्तन नहीं होगा अभी। अब सुनने लगेगा, उस पर विचार करने लगे तो पुण्य कर्म का अनुभव बढ़ने लगेगा, वो बढ़कर उदय में आने लगेगा, और पाप कर्मों का अनुभव घटकर उदय में आने। तो पाप का कर्म घटता चला जाएगा, पाप कर्म, और पुण्य कर्म अपने आप बढ़ता चला जाएगा। पुण्य की रुचि नहीं रहेगी उसको, सच्चा तत्व ज्ञान समझने पर पुण्य की रुचि छूटेगी, पुण्य नहीं छूटेगा। ख्याल में आया ना? जो पुण्य का निषेध करता है उसके पुण्य नहीं छूटता। पुण्य की रुचि छूटने पर भी पुण्य होता रहता है। क्या मुनियों को पुण्य नहीं होता? मुनियों को है ना, उपदेश देते हैं, शास्त्र लिखते हैं, दिन भर तो इसी में उनका समय बीतता है, तो उनके तो कितना पुण्य बनता है, इतना पुण्य बनता है कि सागरों की जेल पड़ती है फिर, नहीं समझे? हाँ, अभी 600-700 गुण स्थान है, और मरकर मुनि कहाँ जाते हैं? देवलोक में जाते हैं, वहां सागरों की आयु है, तो कौन सा गुण स्थान रहता है वहां पर? चौथा, यहाँ 6-7 वाले, इतनी निराकुलता, और वहां चौथे में, और वहां विषयों की आकुलता, कितनी जलन होती होगी। हमें तो ऐसा, अरे वाह देव में गए। तो देवगति कैसे बांधेगी, देवायु कैसे, हम तो उसके लिए लालायित होते हैं और उनके लिए तो वो तो सजा है। तो देखो,
और बहुत ज्यादा काम, और बहुत ज्यादा समय,
बहुत कितना सागरों का समय। जब मिथ्यात्व और चारित्र मोहनीय कर्म मंद होकर उदय में आने लगेगा, अभी देखो एक शोभसम लब्धि में हमने क्या देखा, सभी कर्मों का अनुभव घट रहा है, अशुभ कर्मों का यानी अप्रशस्त कर्मों का, तो मिथ्यात्व का भी अनुभव घट रहा है। चारित्र मोहनीय ने क्रोध मान माया लोभ वाले जो कर्म है उनका भी अनुभव यानी फल देने की शक्ति घट रही है, तो कर्म का अनुभव घटा है। ये कर्म का उदय जिसको कहते हैं उसका इंटेंसिटी कम हुई, तो अभी जो राग वेश हो गए उनके भी इंटेंसिटी कम होगी निमित्त नैमित्तिक रूप से, उसी को हम कहेंगे विशुद्धि लब्धि। ये अभी पढ़ेंगे, ख्याल है ना? ये होती तो एक समय में दोनों, फिर भी उसको कारण कार्य रूप से पहले क्षोभशम को कहा, बाद में विशुद्धि को कहा, यानी मिथ्यात्व का अनुभव भी घट रहा है, चारित्र मोहनीय का भी अनुभव घटकर उदय में आने लगा, यानी क्रोध मान माया लोभ के जो उदय चल रहे थे वो मंद मंद होने लगे। तो कर्मों का उदय मंद है तो यहाँ जीव के भाव भी मंदता की ओर ही चल रहे हैं। ये सहज दोनों का ऐसा सुमेल होता है, कर्म जीव में कुछ नहीं करता है, फिर भी हम उनकी ओर से उनकी तरफ से कथन कर रहे हैं, इसलिए उसको ऐसे बताएंगे यहाँ पर। तो कहते कि जीव के भी मंद कषाय रूप परिणाम हो गए धर्मानुराग, धर्म के प्रति अनुराग, धर्म यानी पुण्य भाव, धर्म यानी वो सच्चा धर्म क्या होता है उसने भी सुना भी नहीं, उसको अभी देशना नहीं मिली है। धर्मानुराग यानी शुभ प्रवृत्ति, मंदिर में जाना है या कहीं कुछ विवेचन चल रहा है, व्याख्यान चल रहा है, अभी वो सुनने के उसके परिणाम हो रहे हैं, या कोई बुक उसके हाथ में आ गई है तो उसको पढ़ने की उसकी वृत्ति हुई है, इसी बात को विशुद्धि लब्धि के रूप में बताते हैं। पुराने कर्मों के अनुभाग उदय का मंद होना कारण है। क्या कहा, कैसा उदय? अनुभाग उदय। जैसे बंद में हमने देखे थे चार, प्रकृति बंद, प्रदेश बंद, स्थिति बंद और अनुभाग बंद। उदय में आते हुए भी कौन सी प्रकृति का उदय है तो हम कहेंगे हर समय आठों प्रकृतियों का उदय चल रहा है। प्रदेश बंद यानी कितने प्रदेश, कितने परमाणुओं का उदय है, उससे कुछ लेना देना नहीं है। परमाणु कम उदय में आते कि अधिक उदय में आते, उससे कोई फल नहीं है। तो फल किसका मिलता है? कितने अनुभाग के रूप में उदय में आते हैं। अब यहाँ मंद अनुभाग के रूप में उदय में आते हैं तो उसका मंद परिणाम, ऐसे परिणाम फल होगा उसका। तो अनुभाग उदय का मंद होना कारण है, निमित्त है, और मिथ्यात्व रागादिकों का मंद होना, शुभ परिणाम होना, ये नैमित्तिक कार्य है। देखो निमित्त और जो कार्य हुआ है उसको नैमित्तिक कहते हैं। कल कुम्हार की बात आई थी, कुम्हार को हमने निमित्त कहा, और घड़ा बना ये क्या हुआ? उसका नैमित्तिक कार्य हुआ। भाई ख्याल में आता है? कुम्हार को हमने क्या कहा? निमित्त। किसका निमित्त कहा था? घड़ा बना उसका। वो घड़ा क्यों, कहां से कहां, किस में से बना है? मिट्टी में से। तो मिट्टी क्या है? उसका उपादान। उपादान की तरफ घड़े को कहना है तो क्या कहेंगे? उपादेय। वो घड़ा मिट्टी उपादान, घड़ा उपादेय। उसी कार्य को घड़ा बना, कार्य एक ही हुआ है। मिट्टी की तरफ से उसको देखा तो हमने उसको उपादेय कहा, निमित्त की तरफ से देखा तो क्या कहेंगे? वो नैमित्तिक। वो कुम्हार का नैमित्तिक कार्य है। कुम्हार निमित्त है, ये नैमित्तिक। अब यहां लगाना, कर्म का उदय निमित्त है और यहां राग द्वेष हुए वो नैमित्तिक है, ये कहते हैं आप। तो शुभ परिणाम होना उसका नैमित्तिक कार्य है। किसका? कर्म का उदय मंद हुआ है वो निमित्त है, और यहां राग भी घट गए यानी शुभ राग हुआ, शुभ परिणाम हुए, ये कार्य हुआ। इसलिए क्षोभसम लब्धि को कारण जानकर पहले कहा, विशुद्धि लब्धि को कार्य जानकर पश्चात कहा। वैसे तो दोनों एक साथ विद्यमान होती है, एक ही समय में, एक ही अंतर्मुहूर्त में क्षोभसम लब्धि भी है और साथ साथ विशुद्धि लब्धि है, एक ही सिक्के के दो पहलुओं के भांति है। अब ये जो नए परिणाम हो रहे, कैसे? शुभ परिणाम। तो शुभ परिणाम के कारण क्या होगा? अब घाती सभी बंधेंगे, वो तो बंधेगी, अभी उसकी बात नहीं करेंगे। अघाती में क्या होगा? साता वेदनीय आदि शुभ कर्मों का बंध होगा। हमने देखा शुभ परिणामों से क्या होता है, अघाती कर्मों में पुण्य प्रकृति बनती है, उसी को यहां विशुद्धि कहा। तो कहते उसके निमित्त से, देखो पहले तो निमित्त किसको कहा? कर्मों का उदय। तीन बातें होती है एक ही समय में, पुराने कर्मों का उदय, जीव के मोह राग द्वेष के परिणाम, और इसके कारण नए कर्मों का बंध। पुराने कर्मों का उदय कैसा चल रहा है? मंद, इसलिए राग द्वेष मंद होते हैं, पुण्य परिणाम हो रहे हैं। पुण्य परिणाम हो रहे हैं इसलिए नए कर्म का बंध कैसा होगा? पुण्य प्रकृति। कौन से? वो आघाती में साता वेदनीय आदि पुण्य प्रकृतियों का बंध होता है। ये बात ख्याल में आई? ये निमित्त है इसके लिए और ये निमित्त है इसके लिए। पुराने कर्मों का उदय निमित्त है और राग होना ये नैमित्तिक है। उसी राग को निमित्त कहा, किसके लिए? नए बंध के लिए, पुराने कर्म के लिए नहीं कहा। जो कार्य है वही दूसरे के लिए निमित्त है। तो जीव अपने में कार्य कर रहा है राग द्वेष का, ये कर्म का उदय अपने में हो रहा है उसके, और नया बंध कर्म में उसमें अपने में हो रहा है, फिर भी आपस में निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। अब आगे तो पुण्य प्रकृतियों का बंध होता है। ऐसा क्यों होता है? पुण्य प्रकृति का बंध क्यों होता है? क्योंकि जो कोई नया बंध होता है वो मोहनीय के निमित्त से ही होता है। ये कर्णानियोग में बात आई थी, यहां भी फिर लेते हम। कर्मों कितने कर्मों का उदय हर समय होता है? आठों कर्मों का उदय होता है। तो ज्ञानावरण कर्म के उदय में हमने क्या देखा था? ज्ञान की हीनता हो रही है, हीनता हो रही है। कुछ ज्ञान उघाड़ रूप है, हम मानते इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है, तो उसमें से कुछ उघाड़ रूप है और कुछ है ही नहीं, है अभाव रूप है। ज्ञानावरण का उदय चल रहा है ना, मति ज्ञानावरण कर्म का क्षोभम चल रहा है। हमारा मति ज्ञान है, थोड़ा उघाड़ रूप है, बहुत सारा हम नहीं जानते, हमको केवल ज्ञान नहीं है ना, तो बहुत सारा ज्ञान हमारा अभाव रूप है। तो मेरा प्रश्न है, ज्ञानावरण के उदय में जो हमें ज्ञान उघाड़ रूप है उससे बंद होता है कि जो ज्ञान ढका हुआ है ही नहीं उससे बंद होता है? हर्षद भाई,
हाँ
बंद है उससे। आप क्या कहते जगदीश भाई?
जो ज्ञान है उससे,
दो दो मत हो गए। हाँ आप क्या कहते?
वर्णी से होता है।
हाँ हाँ,
ज्ञानावरणी से तो क्या होता है कर्म?
ज्ञानावरणी से नहीं, हम ज्ञान से बता रहे हैं। ज्ञानावरण के उदय में क्या हो रहा है? ये दो बातें हो रही है, थोड़ा ज्ञान उघाड़ रूप है और बाकी ज्ञान बंद है। क्या कहते हैं आप भाई साहब, जयंत भाई साहब? जो उघाड़ रूप है ना वो जीव का स्वभाव है, स्वभाव से बंद होगा तो जीव कभी बंद से मुक्त ही नहीं होगा। और ये जो है ना वो है ही नहीं है भाई, जो है ही नहीं वो क्या बंद करेगा? हाँ, तो ज्ञानावरण से उसके उदय में बंद नहीं होगा। दर्शनावरण में भी यही रूल है और अंतराय में भी यही रूल है। अब मोनी की बात लास्ट में रखेंगे।
तो दूसरी तरह देखने जा रहे तो जो जितना उघाड़ है वो रिस्पॉन्सिबल, जो बंद है तो इसी तरह बंद का उघाड़
बंद यानी ये ज्ञान नहीं है, नहीं है ज्ञान, नहीं है आवरण है, ये तो है ही नहीं तो वो बंद कैसा करेगा? है ना, तो उघाड़ है वो तो बंद करेगा ना? नहीं, जितना उघाड़ रूप ज्ञान है ना यही तो तत्व निर्णय करने वाला ज्ञान है, और उसी से बंद होगा तो क्या होगा? कर्म का बंध इससे नहीं होने वाला, नया बंध जो होना है ना कर्म बंध, इससे कैसे होगा? ये तो ज्ञान अपना स्वभाव है, स्वभाव का अंश है, तो स्वभाव से बंध नहीं होता कभी। ज्ञान हमारा स्वभाव है तो स्वभाव से बंध नहीं होगा, दर्शन हमारा स्वभाव है उससे बंध नहीं होगा, ये दान लाभ वीर्य हमारा स्वभाव है उससे बंद नहीं होगा। अब हम आघाती में चले जाते हैं, आघाती कर्मों में क्या पोजीशन है, कौन कौन से है? साता वेदनीय में अभी हमारी सारी अनुकूलता है, संयोग अच्छे है, तो अच्छे संयोग बंद करेंगे कि बुरे संयोग? बोलो, उनको विचार करने दो जरा। हाँ बोलो, अच्छे संयोग बंद करेंगे। हाँ तो सभी अच्छे संयोग वालों को बंद होगा, जरा डरना भाई अभी। संयोग बंद, आप संयोग अगर बंद करने लगे तो हम संयोग हमसे रहित नहीं है, ख्याल है ना, वो तो परद्रव्य है, परद्रव्य कभी बंद कर ही नहीं सकता, हमें एक एक को निकाल बाहर करना है। तो बुरे संयोग बंद करेंगे कि नहीं करेंगे? ना अच्छे संयोग बंद का कारण है ना बुरे संयोग बंद, संयोग बंद का कारण है ही नहीं।
सिद्धों को हाँ?
सिद्धों को है ना, आजू बाजू अरिहंतों को समोशरण है, इतने लोग खमा खमा कर रहे हैं, इतने सारे देव आते हैं, असंख्य देव उनके नमस्कार करते हैं, उनको बंद होता होगा कि नहीं होता होगा ज्ञानावरणादि का? अच्छा, अब हम आयु बंद का कारण है कि नहीं? लंबी आयु बंद का कारण है कि छोटी आयु? कुछ नहीं। अब नाम कर्म के उदय में क्या हो रहा है? शरीर की रचना हो रही है। अब तो है ना, ये गोरा शरीर बंद का कारण है कि काला? ये मोटा है तो बंद ज्यादा होगा और छोटा है तो कम बंद होगा, क्या हाइट वाले को बंद कम होगा कि ज्यादा होगा, कैसे क्या है क्या?
नहीं होगा।
तो शरीर बंद का कारण नहीं है,
नाम कर्म
बंद का कारण नहीं है, और उच्च गोत्र या नीच गोत्र वो भी बंद का कारण नहीं, परंतु शरीर में जो आत्मबुद्धि है ना, शरीर मैं हूं ऐसी मान्यता, वो क्या है? मिथ्यात्व है। ये संयोग अच्छे या बुरे वो क्या है? मिथ्यात्व है। यानी मिथ्यात्व और चारित्र मोनी के जो राग द्वेष है वही बंद का कारण है। मोनी के उदय में जो मोह राग और द्वेष होते, मोह यानी मिथ्यात्व और राग द्वेष होते हैं, वही एकमात्र बंध का कारण है। आठ कर्मों का उदय चल रहा है, आठ कर्मों में एकमात्र मोनी के उदय में ही जीव को नया बंध होता है, क्योंकि मोनी का उदय है और डायरेक्ट उदय बंद नहीं करता। जीव यहाँ राग द्वेष करता है और राग द्वेष के कारण नया बंध होता है। यही प्रोसेस कब से चला रहा है? अनादि से। कब तक चलेगा?
क्या बताएगा?
अनंत काल तक चलेगा? अरे हमारा नहीं चलेगा ऐसा बोलो। हाँ अभी हमारा ज्यादा टाइम नहीं चलने वाला ऐसा कह दो।
उसने अनंत की भाषा
सीख ली। कहीं भी अनंत लगा दो।
नहीं भैया मेरे को तो बंद करना है, जब समय तो की वाणी सुनने।
बहुत अच्छी बात है। देखो
इनका नाम बदली कर दो, अनंत हर्षद।
उसको नाम अनंत राय कर दो।
अंतर है,
अनंत नाम होता है गुजराती में।
तो देखो ये हमने देखा ना, अब नए परिणाम शुभ राग रूप होते हैं, उनके निमित्त से सातावेदनीय शुभ आयु शुभ नाम उच्च गोत्र आदि प्रशस्त प्रकृतियों का बंध होता है, क्योंकि मंद कषाय चल रहे हैं ना, अभी मोहिनी का उदय मंद हो रहा है तो पुण्य प्रकृतियां बन रही है, क्योंकि आठों ही कर्मों का उदय रहने पर भी नया बंध मिथ्यात्व और कषाय के निमित्त से होता है। अब ये बात हमने पढ़ी है, अब आगे बढ़ते विशुद्धि लब्धि जहाँ लिखा है बोल्ड लेटर में, अब विशुद्धि लब्धि की परिभाषा डेफिनेशन हम देखने जा रहे हैं। क्षोभसम लब्धि की तो हमने देख ली है, विशुद्धि लब्धि की देखते अभी। क्षोभसम लब्धि जिसे प्राप्त हो गई है, क्षोभसम लब्धि क्या हमने देखी, तो अनुभाग घटता हुआ उदय में आने लगता है, उसके कारण जीव को सातावेदनी आदि प्रशस्त प्रकृतियों का बंध के कारणभूत धर्मानुराग रूप शुभ परिणाम होते हैं, उनकी प्राप्ति वह विशुद्धि लब्धि है। अपनी भाषा में कहना है कि जीव के मंद कषाय रूप शुभ परिणाम चलते हैं, वह उसकी विशुद्धि लब्धि है। इतने मात्र से ही अनेक जीव संतुष्ट होते हैं। बहुत सारे देखते हैं हम कि भला है वो जीव, दूसरों को मदद आदि करता है, मंद कषाय रूप है, बस उसी हमको इतना ही चाहिए, हमें कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, इतना सोचकर वो शांतता से जीवन बिताता है। आगे चलकर उसको देशना की प्राप्ति होना, उस पर विचार करना आदि कार्य नहीं होता है। तो ये हमने देखा ना, ये तो एक एक लब्धि अंतर्मूर्त रहती है, वो लगातार पूरे लाइफ टाइम तक तो शुभ परिणाम में रहेगा नहीं, क्योंकि शुभ परिणाम हो या अशुभ परिणाम हो उसकी लिमिट है अंतर्मूर्त, पश्चात तो बदल ही जाता है, फिर दोबारा हो जाता है, ऐसे पलटते रहता है। तो उसने पुण्य प्रकृतियां बांधी, फिर परिणाम पलट गए, तो कभी पुण्य बांधे कभी पाप बांधा, कभी पुण्य बांधा कभी पाप बांधा, ऐसे तो चलता ही रहेगा। और फिर उसका उदय भी वैसे आता रहेगा, जो अनादि से चला आ रहा है वैसे चलता रहेगा।
नियम है ऐसा कि बदलाता ही रहेगा,
ऐसा नियम है, लगातार पुण्य 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 होगा तो बीच में पाप परिणाम आएगा ही अंतर्मूर्त के बाद। लगातार पाप भी कोई नहीं कर सकता, हम देखते हैं वो नारकी जो तो इतने समय तक पाप करते रहेंगे, नहीं उनके भी होगा,
पुण्य भी नहीं कर सकता,
नहीं कर सकता कोई। पूजा करते करते बीच में कुछ न कुछ ऐसा विचार टपकता है ना, हम तो पूजा करने शुभ भाव करने बैठे है, क्या होता है बीच में, हाँ हाँ। बहुत आपका प्रश्न ऐसा है कि जो छठे सातवें गुणस्थान वाले महाराज है तो उनके तो अंतर्मूर्त में बदलता होगा, तो उनका शुद्ध और शुभ में बदलता है, ख्याल है ना, उनका भी अंतर्मूर्त में पलटता है। हमने देखा छठा गुणस्थान अंतर्मूर्त रहेगा तो सातवां हो जाएगा, और नहीं होगा तो शुभ होकर मिथ्यात्व तो में गिरेगा। वो लगातार छठे में भी लंबे काल तक रहते हैं और सातवें में ऊपर का पुरुषार्थ नहीं होता तो वो छठे में से नीचे गिरते, हो सकता है पहले गुणस्थान में भी आ जावे। तो उनका तो शुभ में से शुद्ध, शुद्ध में से शुभ, शुभ में से शुद्ध, शुद्ध में से शुभ, ऐसा अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त में पलटता है, इसीलिए उनको छठा सातवा छठा सातवा कह दिया है, उनके दो अलग गुणस्थान ही बना दिए। अभी मिथ्या दृष्टि से क्या हो रहा है, मिथ्या दृष्टि का शुभ अशुभ शुभ अशुभ शुभ अशुभ, वो एक ही गुणस्थान, शुभ करो तो भी वो उसका गुणस्थान नहीं पलटेगा, उसका गुणस्थान मिथ्या तो ही रहेगा, कितना भी शुभ क्यों न करे। उसका गुणस्थान कौन सा है?
पहला।
उसने व्रत भी अंगीकार किया, अभी सम्यक तो नहीं हुआ, तो गुणस्थान पहला। तो पहले में से चौथे जाने के लिए क्या होगा? ये सारा देशना लब्धि आदि पूर्वक तत्व विचार करेगा, सम्यक तो होगा, तो उसका गुणस्थान चौथा हो जाएगा। अकेले पुण्य से कुछ नहीं होगा उसको, क्योंकि पुण्य की लिमिट है, उसके बाद पाप परिणाम होगा ही। और मिथ्यात्व को साबूत रखकर कितना भी पुण्य करे तो उस जीव का कोई कल्याण नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि पुण्य का निषेध करेंगे तो सभी जीव स्वच्छंदी हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। सत्य बात को हम देख रहे हैं, ख्याल है ना? तो पुण्य का निषेध जो बता रहा है, पुण्य का पुण्य हेय है, क्यों हेय है? वो छोड़कर शुद्ध प्रकट करने योग्य है, ऐसा जो कह रहा है ये उसका शुभ भाव है कि अशुभ भाव है? बोलो। जिस अभी शास्त्र में ऐसा लिखा है पुण्य हेय है, पुण्य छोड़कर शुद्ध प्रकट करने योग्य है, ये उसका शुद्ध भाव हुआ कि शुभ भाव हुआ कि अशुभ भाव हुआ? शुभ भाव हुआ, क्योंकि अभी कहाँ उसका प्रकट हुआ है, उसने तो वस्तु स्थिति बताई है कि ये जो मैं कर रहा हूँ इससे भी मुझे ऊपर जाना है, वो छोड़कर पाप करने का वहां उपदेश नहीं दे रहे हैं। छोड़कर कहाँ जाना है? शुद्ध में जाना है। उसके लिए हमारे घर में बेटी जिस दिन पैदा होती है क्या कहते हैं उसको? परायधन। आपको भी पता है? हाँ। कब कहते हैं? जिस दिन पैदा हुई उसी दिन कहते हैं। और उसको कब विदा करते हैं? अरे उसकी यथायोग्य हो जाएगी, पहले उसकी पूरी निगरानी रखेंगे, उसको बड़ा हो जाएगी, उसको स्कूल में कॉलेज में पढ़ाएंगे, उसको एबल बनाएंगे, वो सेल्फ सफिशिएंट बन जाएगी, कुछ कमाने धमाने को भी सिखाएंगे, और फिर उसकी शादी करके वो पराया धन थी तो पराया हो गई। कब हुई? 25 साल के बाद। और पराया कब कहा? पहले दिन। कहना कि नहीं कहना? ऐसा ही है पुण्य को। पुण्य को है ये कहा? कब? मिथ्यात्व गुणस्थान में, अभी सम्यक तो प्रकट करने के पहले। बाद में क्या होगा? अरे पुण्य बढ़ता चला जाएगा। कब तक? अरे मुनि होगा तो भी पुण्य बढ़ता जाएगा। उसको हेय तो पहले करके आए हैं, तो हेय कब होगा? जब शुद्ध में चले जाएंगे और कायम के लिए, फिर वो केवल ज्ञान प्रकट करेंगे, सब छूट जाएगा, शुभ अशुभ सब। तो कहने मात्र से कुछ नहीं बिगड़ता, क्या ले ना? क्योंकि हम सही निर्णय कर रहे हैं। ये निर्णय मिथ्या तो अवस्था में होगा तब उसको जाके सम्यक्त तो होगा। निर्णय करना है, पुण्य को नहीं छोड़ना है। वो छोड़ी नहीं ना, अभी कहां छोड़ा है उसने? शुद्ध प्रकट किए बिना पुण्य छूटेगा ही नहीं, और वो भी शुद्धोपयोग भी प्रकट किया तो अंतर्मूर्त के लिए रहेगा, बाद में कहां जाएगा? पुण्य में ही आएगा। वो छोड़ना चाहेगा तो भी नहीं छूटेगा उसको। 10वें गुणस्थान तक वो सूक्ष्म लोभ वगैरह होते हैं, पुण्य परिणाम होते रहते हैं, मुनियों को भी है। तो घबराना मत सत्य कहने से, हाँ, और उसमें से गलत अर्थ भी नहीं लेने की जरूरत। जो सही अर्थ है उसको वैसा हम ग्रहण करेंगे। हमें नदी पार करनी है भाई, यहाँ क्या तरीका है? हमारे पास ब्रिज बीज कुछ नहीं है, देहात में है, हम नाव में बैठे के? तो नाव में बैठना के नाव छोड़ना? बाद में छोड़ना, अच्छा। तो नाव में बैठना भी चाहिए, तो बैठ गए तो मझधार में उतरना कि नहीं उतरना? नहीं उतरना, डूब जाएंगे। हाँ, तो वहां पहुंचेंगे। अब तो उतरना के वहां बैठे रहना? हाँ, तो उतरना कब? जब पैर तीर पहुंच जाएंगे। तो नाव छोड़ना योग्य जो हम कहेंगे, तो वहां पहुंचने के वहां उतरने के लिए छोड़ना, बीच में मत छोड़ना। ऐसे ही पाप में जाने के लिए पुण्य मत छोड़ना। तो पाप से बचने के लिए पुण्य करता, ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा है कि जब तक ऐसी दशा न हो, कैसी? जब तक शुद्धोपयोग प्रकट नहीं होता तब तक क्या करना? शुभ भाव रूप प्रवर्तन करो, ऐसा लिखा है। परंतु श्रद्धा ने ऐसा रखो कि यह भी छोड़ने योग्य है। श्रद्धान में लेना है, आचरण में छोड़ने को नहीं बोला है। अभिप्राय में, जैसे हमने लड़की को अभिप्राय में या पराया धन माना है, पहले दिन उसको बाय बाय नहीं किया, ऐसे ही पुण्य के बारे में।
दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट
क्योंकि अभिप्राय को हम टटोल वैसे ही रखते हैं और पुण्य की क्रिया करना चाहे करो ना पुण्य, किसी ने निषेध नहीं किया, परंतु श्रद्धान पहले में पहले ठीक करना है। ये श्रद्धान के लेवल पर उसको स्वीकार करना है और श्रद्धान पुण्य को हमने हेय कहा, श्रद्धान में कहा हेय किया, ने छोड़ा नहीं उसको, छोड़कर हमें आत्मा में एकाग्र होना है। पर जब तक नहीं एकाग्र होते और आत्मा संबंधी जब विचार चलते हैं, वो तो सर्वोत्कृष्ट पुण्य है। मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, शरीर से भिन्न हूँ, ये जो सारे विचार के लेवल भी चले गए, वो तो सर्वोत्कृष्ट पुण्य है, करोड़ों उपवास से भी बड़ा पुण्य है। और उस पुण्य को छोड़कर शुद्ध उपयोग में जाएगा जी, ख्याल है ना? निर्विकल्प होने के पहले विकल्पों की भूमिका में आएगा जीव, और वे छूटकर जीव पूर्ण रूप से आत्मा में एकाग्र हो जाएगा। तो पुण्य को है क्या, तो कोई बिगड़ता नहीं है, उसका सही अर्थ समझ में लेना है, ख्याल है ना? नहीं तो हमें ऐसे कोई वाक्य सुनते हम तो हमको एलर्जी आती बहन, नहीं जो कोई एलर्जी, हमारे कोई एलर्जी है तो वो चीज जो हम खाते हैं, कुछ छूते हैं तो हम इसकी एलर्जी आती है, सब रैश आता है ना? वैसे पुण्य को ये कहते हैं, हमारे यहाँ है कोई ऐसे, उनको बहुत बुरा लगता है, आप ऐसा क्यों कहते, लोग पुण्य छोड़ देंगे, उनको डर क्या है, उनको भी ऐसा ही डर है, अरे तो आप ऐसा कहेंगे तो आपका सुनकर लोग पुण्य छोड़ देंगे। तो ये अभिप्राय के लेवल, कोई ऐसा सही सुनने वाला पुण्य नहीं छोड़ेगा, क्योंकि अभी जो सुन रहा है वो भी पुण्य कर रहा है, जो बता रहा है वो भी पुण्य ही कर रहा है। तो पुण्य की छोड़कर जो बातें, वो है या किस लिए, किस अपेक्षा से छोड़कर आत्मा में लीन होने योग्य है, तब उसको छोड़ा है ऐसा कहेंगे। कहने मात्र से कोई छूटता नहीं है भाई, ख्याल आया? बोलो कोई प्रश्न है? अपना समय होने को आया, अभी 2-3 मिनट है। ये जो कोई कथन होता है उसका सही अर्थ हम लेते हैं तो कोई विवाद का प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। जब हम उसका आधा ही कुछ आधा अधूरा सुनते हैं या आधा अधूरा रूप से उसको प्रस्तुत करते हैं, तो अननेसेसरी विवाद भी होते हैं और हमारा कंफ्यूजन हो जाता है अधिक से अधिक। हमें तो अपना स्वयं का कल्याण कैसे हो, इस बात को मुख्य करके इसको सुनना है और ग्रहण करना है। दुनिया क्या कहती है, क्या झगड़ा करती है, उससे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारा जीवन इतना अल्प है और इतना मनुष्य भव दुर्लभ है। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि हमने बड़े बड़े कर्णानियों के भी ग्रंथ पढ़ रहे हैं तो आंसू आते हैं आंख में। कोई एकेंद्रिय में चला जाएगा जीव बाय चांस, तो असंख्यात पुद्गल परावर्तन तक तो बाहर नहीं निकल सकता कोई जीव, मैक्सिमम काल वहां भटकने का, असंख्यात पुद्गल परिवर्तन जो अनंत 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 काल है, आप उसके इमेजिन नहीं कर सकते। उसमें से द्विंद्रियादि पर्याय पाना भी अत्यंत दुर्लभ है, मनुष्य पर्याय तो इतनी दुर्लभ में दुर्लभ बात है। देखो, मनुष्यों से नारकी होना सुलभ है, नारकियों से देव होना सुलभ है, तिर्यंच में तो इतने सारे जीव है और वो तो बार बार मिलती ही है, अनंत गुणा अनंत बार उसको लिया है, परंतु मनुष्य पर्याय अत्यंत दुर्लभ बात है। और मनुष्य पर्याय पाना, और वो भी संगी पंचेंद्रिय है और उसके पांचों इंद्रिय काम कर रहे हैं, बुद्धि की इतनी क्षमता है, और ये जो जिनागम है उसका लाभ हुआ है, उसका अर्थ भाषित होता है और थोड़ी उसको सुनने के प्रति रुचि है, इतना दुर्लभ में दुर्लभ अवसर मिल गया है, और अब अपना कल्याण नहीं करेंगे तो फिर दोबारा ये अवसर आना मुश्किल है। बिल्कुल, यानी चेतना ही चाहिए, क्योंकि ये सारे परावर्तन आदि का स्वरूप हम देखते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कैसा ये स्वरूप है और कैसे, यानी हम ऐसे भाग्यवान, कोई ऐसा पूर्व पुण्य का जबरदस्त उदय हुआ होगा कि ये बात हमारे कान में भी पड़ी, फिर उस पर हम जब विचार करते हैं, इसी को तत्व विचार कहेंगे, नहीं ये बात ऐसी है मेरे अभी समझ में नहीं आ रही है, परंतु ये कुछ समझने जैसी बात है। हम जिसे समझते थे ये कुछ अलग बात, अंदर से ऐसा लगता है अरे तत्व ज्ञान कुछ अलग बात है। देखो हम भी धार्मिक घराने में से थे, ये पुण्य वगैरह सारे बचपन से करते आए थे, परंतु जब पहली बार ये सुना तो ऐसे लगा नहीं ये कुछ अलग बात है इसमें, और अंदर से रुचि ऐसी जगती है और उसको सहज ऐसा योग मिल जाता है, संयोग भी होते हैं, निमित्त भी, सब कुछ ऐसे होते हैं कि उसको सत्य बात समझ में जरूर आती है। तो हम बढ़ेंगे अभी आगे, अपना समय हो गया है, इसकी चर्चा और आगे बढ़ाएंगे कल। बोलो 2400 भगवान की जय।